नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थी और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है प्रोसेसिंग ऑफ लाइब्रेरी मटीरियल क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगू जी। तो आइए शिक्षार्थियों मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम प्रोसेसिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग।
आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है लेसन 10, प्रोसेसिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। यहाँ पर हम आपको क्या बताएंगे, यहाँ ये बताएंगे कि ये जो सारा मटेरियल है इसको किस तरीके से इसे विस्तारित किया जाता है, सही तरीके से रखा जाता है, और अगर नहीं हो रखेंगे तो इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना, इन्फॉर्मेशन को निकालना जो आपको जब ज़रूरत हो वो नहीं मिल सकता, क्योंकि लाइब्रेरी एक समुद्र की तरह है, वहाँ पर हर तरह के मटेरियल आपको मिलते हैं। अगर इन्हें सही ढंग से नहीं रखा जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो एक टाइम की वेस्टेज भी हो जाती है, और जो प्रॉपर एम है हमारा लाइब्रेरी का सर्विस देने का या यूज़र्स का टाइम सेव करने का, यूज़र्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने का, वो सब हमारा रह जाएगा। इसके लिए लाइब्रेरी में क्या किया गया है, लाइब्रेरी मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है। वो जो एक टेक्निकल पार्ट है लाइब्रेरी का है वो है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। हम अपने ये जो हमारे शिक्षार्थी हैं 12वीं क्लास के, इन्हें हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं सिखा रहे हैं या कैटलॉगिंग प्रॉपर करना नहीं सिखा रहे हैं, पर हम आपको इतना बता देते हैं, इतना समझा देंगे इसमें आपको कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो आप यूज़ कैसे कर सकते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन को, या कैटलॉग के थ्रू आप कैसे इनको एक टूल की तरह समझा जाता है जो आपको मतलब आपको हेल्पफुल रहते हैं, आपको सही दिशा दिखा देते हैं लाइब्रेरी में जाकर के कैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। इसके लिए क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग कितने इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे, अगर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स हो या बीलिप हैं आगे जा करके, या कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करते हैं एक एक दो दो साल के, उसमें क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपको लाइब्रेरी में काम करना है और आपको जानना है क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, कितनी तरह की क्लासिफिकेशन है। यहां पर आपका मेन एम है कि लाइब्रेरी में कैसे आप अपनी क्लासिफिकेशन की मदद से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएंगे। तो देखा जाए हमारे पास कितनी तरह की सामग्री जो लाइब्रेरी में होती है, तो हम क्यों इसे एक्वायर करते हैं, इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे मेन एम जो है हमारा वो है हम सपोर्ट कर पाएं टीचिंग को, पढ़ाने को, सीखने को, लर्निंग को, ताकि हम जो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे जो यूज़र्स हैं जो भी लाइब्रेरी में आते हैं, जब भी उन्हें ज़रूरत हो तब हम उन्हें एकदम से प्रोवाइड कर पाए, हम उन्हें एकदम से मैसर कर पाए, एकदम से उन्हें दे पाए जो भी वो मांग रहे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, इच्छा है, वो एकदम से उनके पास मिल जाए उन्हें। तो इसलिए क्यों हम कहते हैं इम्पोर्टेंट बन जाता है इसी मटेरियल को, जो तरह तरह के मटेरियल, इन्हें एक सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक तरीके में, ऑर्गेनाइज तरीके में इस मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना, ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं उनको अनहिंडर्ड, अनबायस, आपको किसी तरह के भी कोई भी रुकावट ना आए जब आप लाइब्रेरी में आते। आपके लाइब्रेरी आने से पहले जो बैकग्राउंड पे काम हो रहा होता है, जो टेक्निकल स्टाफ भी काम कर रहे होते हैं, वो यही है क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको एकदम सहायता मिल जाती है। हर जगह अगर देखो क्या बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में क्या एक टेक्निकल सर्विसेज का एक पूरा डिपार्टमेंट ही होता है, एक डिवीजन हो जाता है, वो वहाँ पर पूरी कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें वो वहाँ पर ही इसको हैंडल करते हैं। तो बाकी छोटी लाइब्रेरीज में तो एक या दो लोग होते हैं, छोटी लाइब्रेरीज में क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग भी वही लोग करते हैं, टेक्निकल लोग ही करते हैं जो लाइब्रेरी को मेंटेन भी करते हैं, दोनों ही चीज़ें वहाँ पर की जाती है। तो टेक्निकल प्रोसेसिंग में आपको मेन समझने की क्या ज़रूरत होती है कि क्लासिफिकेशन का एम क्या है, क्लासिफिकेशन हम करते कैसे, और अगर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है हमारे पास तो इससे हम यूज़ कैसे करते हैं। इसीलिए हम ये लेसन में आपको इसका आउटलाइन बता देंगे, समझा देंगे कि क्लासिफिकेशन को कैसे यूज़ किया जा सकता। कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत है जो आप टेक्निकली याद रख सकते हैं, जो कि आपको सवालों को जवाब देने में आपको मदद हो जाएगी। जैसे मेन मेन क्लास अगर आप याद रखेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है। अगर आपको पहले से ही मेन क्लास पता होगा एजुकेशन का क्या है, तो आप फटाफट जा करके अपना लेके जा सकते हैं किताब को, उसी सेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि आपको मेन बेसिक चीज़ें पता है। इस लेसन को बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स तय किए, हम आपको क्या क्या समझाएंगे, जब आप ये लेसन पढ़ चुके होंगे तो आपको क्या समझ आ जाएगा कि टेक्निकल प्रोसेसिंग कितनी ज़रूरत है इस मटेरियल के लिए, क्यों ज़रूरत है, और टेक्निकल प्रोसेसिंग में क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, फिजिकल प्रोसेसिंग, शेल्विंग, फाइलिंग, ये सब चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम ये समझें कि अगर हमारे पास कोई हेल्पर है लाइब्रेरी में और उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आपके पास 50-100 किताबें रिटर्न हुई और वो सही तरीके से सही जगह पर नहीं पहुँची तो वो लॉस के बराबर हो गई। तो इसलिए उनकी भी पूरी इम्पोर्टेंट यहाँ पर फाइलिंग, शेल्विंग का, डॉक्यूमेंट्स को रखने का बहुत अच्छा ज़रूरत है। तो हम पर्पज़ ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्या पर्पज़ है, हम ये भी पढ़ेंगे कि नोटेशन क्या चीज़ होती है। नोटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है, वोकैबुलरी है क्लासिफिकेशन में, जिसको हम आपको समझाएंगे, और नोटेशन को याद रखना ज़रूरी है। नोटेशन आपको क्लासिफिकेशन में क्लास नंबर ना भी बना पाए, पर कम से कम क्लास नंबर को याद रखने में आपको हेल्पफुल रहेगा। वो किस तरह की कितनी तरह की लाइब्रेरीज हैं अलग अलग, और क्योंकि हर लाइब्रेरी की नीड अलग है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की अपनी नीड है, स्कूल लाइब्रेरी की अपनी नीड है, हॉस्पिटल लाइब्रेरी की अपनी नीड है, या इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी है उनकी अपनी नीड है, या डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी उसकी अपनी नीड है। उस तरह से कई क्लासिफिकेशंस भी हैं जो कि हम लोग चूज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लासिफिकेशन यूज़ करना चाहते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या सूट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको तरह तरह के क्लासिफिकेशन, यहाँ हमको मेन किसके बारे में बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस दो हैं, जो मतलब देखा जाए कि छोटी से छोटी लाइब्रेरी भी कर लेती है और बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी भी करती है, वो है डिबे डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC और कोलन क्लासिफिकेशन जो डॉक्टर रंगनाथन ने दी है इंडिया में। डिबे डेसिमल जो है मेलविल डिबे ने किया है, ये सबसे पहले आई है, उसके बाद कोलन क्लासिफिकेशन आया है। हम इसमें हम आपको समझाएंगे, बताएंगे ये क्लास नंबर क्या होता है, बुक नंबर क्या होता है, ओवरऑल कॉल नंबर क्या होता है या कलेक्शन नंबर क्या होता है। जो बुक की आपने यूजुअली देखा होगा, बुक के बैक पे एक स्पाइन पे, बुक की जो बैक होती है वहाँ पर एक स्लिप लगाते हैं, वहाँ पर एक चिपकाते हैं हम एक स्लिप, आप देखेंगे उसी की वजह से आप फटाफट किताब, अब तो बारकोडिंग भी होती है वहाँ पर, आप बारकोड से भी कर सकते हैं, पर अभी आप देखेंगे फटाफट अगर आप बुक देखना चाहते हैं वो नंबर वाइज जो लगती है बुक शेल्व्स पे, वो उसी नंबर की वजह से। यूज़ ऑफ कैटलॉग क्या, ये तो क्लास नंबर की बात हुई, तो कैटलॉग की क्या ज़रूरत है, अगर क्लास नंबर दिया हमने तो कैटलॉगिंग एज अ टूल कितना मदद करता है हमें। तो लाइब्रेरी कैटलॉग, कितनी तरह के कैटलॉग्स होते हैं, कौन सी कैटलॉगिंग आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में। अब तो ज़्यादातर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादातर कंप्यूटराइज हो गई हैं, तो इसलिए फिजिकल कैटलॉग्स का ज़माना नहीं रहा। फिजिकल पहले हम लोग प्रॉपर कार्ड लेते थे, उसे बनाते थे, फिर वो एकदम कैटलॉग कैबिनेट में फाइल होता था, वो अल्फ़ाबेटिकली भी लगता था या सब्जेक्ट वाइज भी लगता, या जैसे भी क्लास नंबर के हिसाब से भी लगते थे। तो ये सब हम बहुत साल पहले काम करते थे, पर अब ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली लाइब्रेरीज़ के पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें वो काम करते हैं, जिसकी की वेब ओपैक से या ओपैक में आपको पूरी कैटलॉगिंग मिल जाती है। उन्होंने फील्ड्स बनाए हुए हैं बिल्कुल कैटलॉग कार्ड की तरह ही, कि ऑथर कहाँ, टाइटल कहाँ, सब्जेक्ट कहाँ, पेजेस कितने, कॉस्ट कितनी, वो सब फील्ड्स उन्होंने उसमें बनाए हुए हैं। आप उसको फिल करते जाएंगे, वो सेव करता जाता है। अब आपके पास जितनी किताब है उतना आपका डेटाबेस बड़ा होगा, तो वहाँ पर हमें सर्च करना भी आसान है थोड़ा। तो डिक्शनरी कैटलॉग और क्लासिफाइड कैटलॉग, ये हमारे पहले जो लाइब्रेरीज थी कई जगहों पर अभी भी फिजिकल कैटलॉग्स का है। या अगर आप देखोगे तो ओपैक में भी अगर आप पूछता है वो कैसे आप सर्च करना चाहते हो, आप ऑथर से सर्च करना चाहते हो, आप टाइटल से सर्च करना चाहते हो, या आप कभी सब्जेक्ट से करना चाहते हो, तो सब्जेक्ट का डिक्शनरी कैटलॉग की तरह ही होता, या क्लासिफाइड कोड का मतलब अगर आप क्लास नंबर से ही करना चाहते हो, तो वो ये सब पूछते हैं उसमें। तो इस तरह से हम लोग इस लेसन में हर इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। तो पहला, सबसे पहली चीज़ है टेक्निकल प्रोसेसिंग। टेक्निकल प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे कि मैं आपसे बात करते हुए बता रही थी आपको, मेन जो है टेक्निकल प्रोसेसिंग में, जो लाइब्रेरी में मेन रोल जो प्ले करता है वो है किसी भी डॉक्यूमेंट को, जहाँ अगर हमें उस डॉक्यूमेंट तक पहुँचना है, अगर हमने एक्वायर कर लिया है किसी भी डॉक्यूमेंट को, हमारे एक्विजिशन सेक्शन ने ले लिया, उसकी एक्सेशनिंग कर ली, रख लिया, मगर एक्विजिशन सेक्शन करने के बाद अगर हम उसको टेक्निकल सेक्शन नहीं प्रिपेयर करेगा अपने यूजर्स के लिए, मतलब अगर उसकी कैटलॉगिंग या क्लासिफिकेशन नहीं होगी, तो वो जो अक्वायर करने से लेकर सर्कुलेशन तक का गैप है, जहाँ मैंने किताब खरीदी और फाइनली किताब का एम क्या है, इस किताब को एम ये है कि ये मेरे यूज़र्स तक पहुँचे और यूज़र इसे यूज़ कर ले, ईज़िली यूज़ करे, उनको ईज़िली रिट्रीव हो जाए, ईज़िली वो फाइंड आउट कर ले इस किताब को। तो ये टेक्निकल प्रोसेसिंग क्या करता है, ये हमारा एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो जोड़ता है अक्वायर करने से लेकर के सर्कुलेशन तक, जहाँ से हमने किताब को अक्वायर किया, कहाँ से अक्वायर किया, कैसे अक्वायर किया, उस अक्वायर करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, मोटिव है इस किताब को कोई पढ़े तो हम इसको चाहते हैं इसको सर्कुलेशन में ले आएंगे। सर्कुलेशन में लाने का मतलब ये होगा ये इशू रिटर्न होगी ये किताब। तो इन सब के बीच में एक जो ब्रिज है वो है आपका टेक्निकल प्रोसेसिंग, जो कि कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे वो टेक्निकल एक्टिविटीज़, प्रोफेशनल्स, टेक्निकल स्टाफ जो भी है लाइब्रेरी में वही लोग कर पाते हैं। तो कैटलॉगिंग, फिजिकल प्रोसेसिंग, शेल्विंग, ये सभी जो हम इस सेक्शन में जो लोग काम करते हैं वो सब लोग टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है। टेक्निकल प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें टेक्निकल प्रोसेसिंग करना चाहिए? अभी तक आपको भी ये समझ आ गया होगा कि टेक्निकल प्रोसेसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, आप देखा जाए तो ये ब्रिज है हमारे एक्वायर करने से लेकर के आपके इशू रिटर्न तक। अगर हम टेक्निकल प्रोसेसिंग नहीं करेंगे किताब का, तो वो जैसे हमारे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है, उसे हैंडल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उसमें से भी छोटी सी लाइब्रेरी में भी अपने किताब नहीं ढूंढ पाते हैं। तो लाइब्रेरी में ढूंढना तो मतलब एकदम समुद्र में डाइविंग करने की तरह होगा कि कुछ मिलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल हम लोग इसको सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करें हम अपने सारी डॉक्यूमेंट्स को। तो टेक्निकल प्रोसेसिंग हमें हेल्प करती है डॉक्यूमेंट को लोकेट करने में, कहाँ पर रखा गया है, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जब यूज़ किया, आपने बुक पढ़ ली, आपको 15 दिन के लिए बुक इशू हुई, फिर जब आपने वापस की तो बुक कैसे वापस जाएगी अपनी जगह पर, क्योंकि उसको एक नंबर मिला है, उसको एक जगह और नाम मिला हुआ है, वो नाम जो उस अकेली बुक का है वो ही वहाँ पर जा सकती है। इस तरह से हम लोग जो हमारे टेक्निकल स्टाफ होते हैं उनको बहुत इजी हो जाता है वापस रखना किताब को। तो इसके लिए हम लोगों को क्या है, रीजंस क्या हुए, क्यों हमें ये सब करना पड़ा? सबसे बड़ा रीज़न ये हुआ कि बहुत सारे मटेरियल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा, ट्रेमेंडस ग्रोथ इतनी है इन्फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से हमारे पास लाइब्रेरी मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना इतना टफ हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है। क्योंकि आप देखते हैं खुद ही फिजिकली जो प्रिंट होता है, अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी इतना ज़्यादा मटेरियल है, इतना ज़्यादा ज़्यादा ढूंढना मुश्किल है। अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से या सर्चिंग उसमें बहुत बढ़िया ना हो तो आप नहीं ढूंढ पाए। अगर आप गूगल ही करें, अगर आपकी सर्चिंग बहुत बढ़िया ना हो तो आप एक ही जगह 2000 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर नहीं सकते, 2000 में क्या इन्फॉर्मेशन है वो नहीं ढूंढ सकते। तो आपको एक स्पेसिफिक तरीके से सर्चिंग करनी पड़ती है, उस अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तक पहुँचना पड़ता है। इसी तरह लाइब्रेरी में फिजिकली ये सब चीज़ें, गूगल तो एक बहुत बड़ा वे है कैसे हम हर चीज़ को ढूंढते, इस तरह से लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स को कैसे ढूंढा जाता है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है, इसके लिए हमें टेक्निकल प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस टेक्निकल प्रोसेसिंग को करने के लिए क्या किया गया कि जो हमारे क्लासिफायर्स थे, जो देखा जाए तो फादर ऑफ द लाइब्रेरी साइंस जो इंडियन कहेंगे तो डॉक्टर रंगनाथन थे और या मेलविल डीवे थे, इन लोगों ने बुक्स को क्या किया, पूरी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो है, ओवरऑल यूनिवर्स को क्या किया, इन्होंने इसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया, टोटल इसको अरेंज कर लिया सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मेंटेन करके इनको, ताकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं किसी एक सब्जेक्ट हेड के अंदर आ जाएं। अगर हमने 10 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है किसी को, तो मेन जो होगा हमारा ब्रॉडर जो क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ब्रॉडर जैसे कि हम हमारा घर है वो कहाँ है, फिर वो जगह जहाँ हम हैं, फिर वो ओवरऑल किस सिटी में है, वो सिटी कहाँ कौन से आपके स्टेट में है, वो स्टेट कौन से शहर में, इस तरह से हम छोटे से लेकर के बड़े तक एक तरह का एड्रेस बना लेते हैं हर बुक का, ताकि आपको ये पता चल जाए ये बुक कहाँ से आई है और ये वापस कहाँ पर जाएगी। वो कैसे होता है, वो सिर्फ बहुत सारे क्लासिफिकेशंस की वजह से ही होता है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई या कैटलॉग करते हैं, उसी की तरह उसी वजह से हमें ये करने का, सही तरीके से रिट्रीव करने का मौका मिल जाता है, ताकि हमारे जो यूज़र्स की सेटिस्फेक्शन है वो भरपूर बरकरार रहती है और आपको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स का वो सही तरीके से हो जाता है। अगर आप सिस्टमैटिक हैं तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है 100% सेव हो जाता है। अब इसके अलावा सेवरल बुक्स जो काफ़ी सारे जो और भी टूल्स हैं जो टेक्निकल प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट्स को, ताकि उनका अरेंजमेंट सही से हो, तो वोकेबुलरी कंट्रोल डिवाइस लाइक क्लासिफिकेशन स्कीम, थेसारस, कैटलॉगिंग कोड, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, और ये सभी चीज़ें जो है ये एक तरह का टूल है हमारी लाइब्रेरी को यूज़ करने का। क्लासिफिकेशन स्कीम, वोकेबुलरी, कंट्रोल डिवाइसेस जो हैं, कैटलॉगिंग कोड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लाइब्रेरी में अपनी टेक्निकल प्रोसेसिंग में करते हैं। बेसिक स्टेप्स क्या हैं टेक्निकल प्रोसेसिंग के, बेसिक स्टेप्स हैं टेक्निकल प्रोसेसिंग के, अलग अलग तरह की टेक्निकल प्रोसेसिंग होती है अलग अलग लाइब्रेरीज में। आप देखेंगे ये डिपेंड करता है, ताकि अगर आपकी बहुत ही छोटी सी लाइब्रेरी है तो वहाँ कितने स्टेप्स की ज़रूरत है, वहाँ हमें किस तरह से किताबों को रिट्रीव किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है क्या। और एक लाइब्रेरी में जब अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं तो उसमें हम कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, या एक शेल्फ लिस्ट बनाते हैं, फिर लेबलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी करते हैं, ये सभी स्टेप्स जो हैं ये आपके टेक्निकल प्रोसेसिंग में ही आते हैं। अब हम मेन बात जो करेंगे, अभी अगर आपसे ये पूछा जाए नीड फॉर द टेक्निकल प्रोसेसिंग, क्या ज़रूरत है, हम क्यों करते हैं टेक्निकल प्रोसेसिंग, क्योंकि हमें पता है मटेरियल ज़्यादा, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबंडेंस में आ गया है, आप इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, इसे इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना मुश्किल है, इसलिए टेक्निकल प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। ये एक ब्रिज की तरह रहता है आपके एक्विजिशन से लेकर सर्कुलेशन के बीच में, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी। क्या स्टेप्स हैं इन्वॉल्व टेक्निकल प्रोसेस, क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है, शेल्फ लिस्ट को प्रिपेयर करना, लेबलिंग को, डॉक्यूमेंट्स को लेबल करना, ये सारे स्टेप्स हैं इसके। अब हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। लाइब्रेरी मटेरियल जो भी क्लासिफाई किए जाते हैं, बहुत सारे रीजंस इसके पीछे हैं। पहला ये है ताकि जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी से गया है, इशू हुआ है, जब वो वापस आएगा तो हम उसे अपनी जगह पर रख पाए। अगर हम इजीली इसे वापस नहीं रख पाएंगे तो इक्वल टू लॉस हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट जहां से आया था वहां तक नहीं पहुंचा, वहां कैसे पहुंचेगा? सिर्फ अपने इस क्लास नंबर की वजह से। दूसरा रीजन है ताकि हमारे जितने सारे आइटम्स हमारे पास है, जितनी हमारी कलेक्शन है, जो भी किताबें हैं, वो हम आराम से देख पाए। हम लोग उनको इस तरह तरीके से रखें कि अगर एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट की बुक सारी इकट्ठी मिल जाए हमें, और अगर एक साइज का कोई इशू नहीं है, इसमें लेना देना सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सारी तरह की किताबें ओवरऑल देखा जाए तो इकट्ठी हो जाती हैं एक ही जगह पे। तो इस तरह से हमें क्या हो जाता है, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हर लाइब्रेरी आइटम को मिलता है, स्टाफ लाइब्रेरी का इजीली उसे लोकेट कर पाता है, या आप गाइड भी कर सकते हैं अपने यूजर्स को ताकि ये देख लीजिए ये जो आइटम है ये इधर मिलेगा आपको, ये इस रैक नंबर में मिलेगा। तो यूजर्स का टाइम भी सेव हो जाता है और आपकी जो बुक है उसकी यूसेज भी बढ़ती है। डेफिनेटली अगर आप इजीली रिट्रीव कर पाए इन्फॉर्मेशन को तो आपके जो यूजर्स हैं वो ज़्यादा आपकी लाइब्रेरी में आना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें रखी गई है, लाइब्रेरी रखी गई है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैविंग द सेम सिमिलर सब्जेक्ट कंटेंट। हम ओवरऑल देखते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि हम एक ग्रुप ऐसा बना लेते हैं सब्जेक्ट्स का जहाँ कि आपको सेम मीनिंग की बुक्स, सेम तरह की किताबें जो हैं वो एक सब्जेक्ट के अंडर आती हैं। इट्स अ सिस्टम फॉर अरेंजमेंट ऑफ अडॉप्टेड बाय द लाइब्रेरीज, इनेबल्स यूजर्स टू फाइंड देयर मटेरियल क्विकली एंड इजीली। ऐसा हम लोग इजीली कैसे अपनी लाइब्रेरी में से बुक्स को रिट्रीव कर पाएँ, हम कितनी आराम से अपनी किताबें ले पाएँ यहाँ से, तो इस तरह से हम चाहे किसी बुक का साइज 15 सेंटीमीटर हो, 22 सेंटीमीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, या उसके बुक के अंदर क्या रखा है उससे भी कोई मतलब नहीं। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें नेचुरली एक ग्रुप इस तरह का बनाना है ताकि जो भी किताबें जिस भी साइज की हो, जिसने भी लिखी हो, वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर आ जाए। तो ये हम क्लासिफिकेशन में करते हैं। पर्पस क्या है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का? इसका ये मेन पर्पस ये है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, इजीली आसानी से जो आपके रीडर हैं उनको आप फैसिलिटेट कर पाएँ, आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से उनकी हेल्प कर पाएँ, ताकि जो उनका एम है, जो उनका रीज़न है लाइब्रेरी आने का, वो फुलफिल हो, वो चलता रहे। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स की, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना गया है लाइब्रेरी का। अगर कोई भी आपके यूज़र्स हैं, जब उन्हें कुछ भी चाहिए तो आप फटाफट उन्हें निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास क्लासिफिकेशन सीक्वेंस में है, कन्वीनियंट ऑर्डर में किताबें रखी गई है, तो हेल्पफुल मैनर में किताबों रखने से आपकी जो रिट्रीवल है वो बढ़ जाती है, आपकी यूसेज जो है वो बढ़ जाती है, आपके जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं बुक्स के बीच में, जब आप फाइलिंग करने चले जाते हैं आप देखते हैं ये बुक गलत है जो यहाँ आई है, या ये पुरानी हो गई है, इसका कोई ज़्यादा यूसेज नहीं है, उसको निकालने का, या हम उन चीज़ों के लिए भी जगह छोड़ते हैं जो हमें आप आगे नए लेके आने हैं किताबें, और नए बुक्स को भी जो हमें बीच में डालना है उनके लिए भी है एक जगह बना के रख लेते हैं जो है सेल्फ। ये जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, इसका जो क्लास नंबर बनता है, ये हम किस तरह से बनाते हैं, ये जो शेल्फ पे हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसका एक जो जिसे हम एक वोकेबलरी जो यूज़ की जाती है उसके लिए वो है नोटेशन। चूँकि मैं कह रही थी इस नोटेशन को हमें ज़रूर डेफिनेटली याद करना है और समझना है। नोटेशन बेसिकली क्या है, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि नोटेशन क्या है, उसकी क्या मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटेशन के क्या है, वो आपको याद है कि नहीं, वो याद रखना है। नोटेशन एक सिस्टम का मतलब एक ऐसा नंबर होता है या एक सिंबल होता है कह सकते हो आप, जो कि आपकी क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. आपकी क्लासिफिकेशन मानो एक यूनिवर्स वो है आपके पास है, डिविडिसमल क्लासिफिकेशन है. तो उसमें क्या किया गया है, उसमें सारे नंबर्स को लिया गया है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 00 से लेकर के इस तरह से लेके गए हैं. तो जो हमारी वहाँ पर नोटेशन क्या है, वहाँ पर नोटेशन हमारे नंबर्स हैं. तो उसके बाद नंबर में कैसे हम इसको ऐड कर लेते हैं, फिर एक सब डिविज़न हो जाता है किताब का, क्योंकि किताब में एक टाइटल होता है, टाइटल एकदम से डीप चला जाता है मीनिंग. तो उस मेन क्लास के अंडर एक सब डिविजन होता है, जो हम पहले 3 डिजिट के बाद एक डॉट लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं. मतलब ये फर्स्ट 3 डिजिट जो है ये हमारा मेन क्लास नंबर है, जो कि हमने डिविडिसमल क्लासिफिकेशन से अगर किया है तो वो है, और आगे का जो है इसका सब डिविजन है. तो ज़्यादातर क्लासिफिकेशंस में क्या क्या यूज़ होते हैं, जो आप नोटेशनल सिस्टम्स, न्यूमरल्स यूज़ होते हैं, लेटर्स होते हैं, बिग स्मॉल दोनों, एबीसीडी जो है, पंक्चुएशन मार्क्स है, आपके सिस्टमेटिकल सिंबल्स में आपके क्लासिफिकेशन स्कीम को यूज़ करने के लिए ये सब पंक्चुएशन यूज़ भी हो जाती हैं. आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी सिंबल्स में यूज़ हो जाता है, और जो न्यूमरल्स हैं वो भी सिंबल्स में यूज़ हो जाते हैं. इसकी इस क्लासिफिकेशन, किसी भी क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए मेन जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, उस क्लासिफिकेशन के 3 पॉइंट्स क्या होने चाहिए, हर क्लासिफिकेशन में सिंपलिसिटी होना बहुत ज़रूरी है. क्लास नंबर जो है वो सिंपल होना चाहिए, ताकि आप आराम से उसे डिवाइड कर पाएँ, आप रीड कर पाएँ, आपको पता चल जाए कि मेरी किताब कहाँ पर है. अगर क्लास नंबर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपका यूज़र तो देख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा. तो एक तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये ईजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि जो रीडर है वो फट से इसे रीड कर पाए. उसके बाद ही ब्रीफ होना चाहिए. ब्रीफ का मतलब ये छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा लंबा एक लाइन खींच तक नहीं, जो कि याद ही ना रहे. बाकी जो इसकी प्रोनाउंसिबिलिटी है, जो हम इसे प्रोनाउंस कर पाए, अगर मैं 330 पूछ रही हूँ तो वो हमें इकोनॉमिक्स का नंबर है, तो मैं आराम से इसे बोल सकती हूँ. उसके बाद डॉट है तो वो मैं आराम से इसे बोल सकती हूँ. तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नोटेशन में 3 फैक्टर्स होने ज़रूरी है हर किसी क्लासिफिकेशन के लिए. अब हम अगर एक एग्जांपल देखेंगे, आपके बुक पे भी दिया गया है एक एग्जांपल, उसमें हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट, नोटेशन इन डीडीसी, नोटेशन इन सीसी. डीडीसी का मतलब है डिविडिसिमल क्लासिफिकेशन, सीसी का मतलब है कोलन क्लासिफिकेशन. तो ये 2 अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं. जैसे हम अपनी लाइब्रेरी में डीडीसी यूज़ करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी जो यूज़ कर रही है वो कोलन क्लासिफिकेशन कर रही है. तो अलग अलग लाइब्रेरी, ज़रूरी नहीं है एक ही क्लासिफिकेशन यूज़ करें, पर मोस्टली जो देखा गया है वाइडली जो यूज़ होती है वो डिविडिसिमल क्लासिफिकेशन ही है, और ये ईजीली भी समझ आ जाती है. तो अब पढ़नी और सीखनी हमें दोनों ही है. इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मेन मेन क्लासेस के नंबर्स जैसे याद रखना है. अब हमने देखा कि टोटल यूनिवर्स को कैसे डिवाइड किया गया, 10 क्लासेस में डीडीसी ने इसको डिवाइड किया, 10 को फिर सब डिविजन कर दिया, वो सब डिविजन 100 में हो गया, 100 जो हो गया फिर फर्दर डिवाइड हो गया, वो 1000 में चला गया. तो इस तरह से हमने देखा हमारे पास जो है एजुकेशन, इसका नंबर आ रहा है 370. तो ये सिंपल एजुकेशन होगी. अब अगर हमें सेकेंडरी एजुकेशन होगी तो इसी में पॉइंट लगा के हम 0723 कुछ ऐसा लग जाएगा, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन में चला जाएगा, सीनियर सेकेंडरी में अलग चला जाएगा, हायर एजुकेशन का अलग चला जाएगा, अडल्ट एजुकेशन का अलग चला जाएगा, डिस्टेंस एजुकेशन का अलग होगा. कुछ भी आप अलग देखेंगे फिर वो आगे बढ़ता जाएगा नंबर. इसी तरह से इसका अगर देखा जाए तो नोटेशन जो है कोलन क्लासिफिकेशन में क्या है, वहां पर हमने इसको टी से रिप्रेजेंट किया. प्लेन एजुकेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो टी है. आप बस इतना ही याद रखें. केमिस्ट्री का है डीडीसी में 540. तो हमने देखा साइंसेज को वहां नंबर मिला है 500. साइंसेज के अंदर जाओगे 510 में आपको मैथमेटिक्स, 520 में आपको और कुछ, 530 में फिजिक्स, 540 में आपको केमिस्ट्री मिलेगा। इस तरह से आप देखें अर्थ साइंसेज या 520 में, तो इस तरह से आप देखेंगे, आप केमिस्ट्री की देखो, आप नोटेशन जो है कोलन क्लासिफिकेशन में क्या है, ई है उसका कैपिटल ई, एजुकेशन का था कैपिटल टी, तो ये लाइब्रेरी साइंस में हमें 020 है, डीडीसी में वहां पर 2 है, वहां पर हमने न्यूमरल 2 लिया है कोलन क्लासिफिकेशन में। हिस्ट्री का 900 है यहां पर, वहां पर कैपिटल वी है। तो इस तरह से बहुत सारी नोटेशंस को यूज करके, न्यूमरल्स को यूज करके, अल्फाबेट्स को, सिंबल्स को यूज करके क्लासिफिकेशन में एक क्लास नंबर को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, और उस क्लासिफिकेशन नंबर को हम फिर ब्रेक कर करके देखते हैं। जब हमें यूज करना होता है, हम इसमें देख लेते हैं कि मेन क्लास क्या है, अच्छा 370 है तो इसका मतलब एजुकेशन में होगा, अच्छा सेकेंडरी एजुकेशन है तो 370 पॉइंट ये होगा, तो आगे जा करके हम इसको देख लेते हैं और समझते हैं। ये तो मेन है हमारे मेन सब्जेक्ट, जो मेन क्लासिफिकेशन का कैसे हम देते हैं, कैसे समझते हैं जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं। तो कॉल नंबर वो नंबर है जो हम बुक के अंदर लिखते हैं, जो क्लासिफिकेशन स्कीम है या लाइब्रेरी आइटम जिस लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट को दिया जाता है, कॉल नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हर किताब के पीछे क्या होता है, एक ऑथर होता है और उसका सरनेम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास नंबर ले लिया 370, अब 370 एजुकेशन में तो बहुत सारी किताबें होंगी आपके पास, मगर हो सकता सेम ऑथर ना हो, कहीं पर वर्मा ने लिखा, कहीं पर शर्मा ने लिखा, कहीं पर मल्होत्रा ने लिखा, कहीं पर भट्ट ने लिखा, ऐसे अगर 4-5 तरह के एजुकेशन की ही किताब है मगर ऑथर अलग अलग है, तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, हम कॉल नंबर बना लेते हैं। कॉल नंबर का मतलब बुक में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग कैसे पिक कर लेते हैं, जब हम कैटलॉगिंग भी करते हैं हम सरनेम को पहले ले लेते हैं। सरनेम में अगर हमने वर्मा है किसी का, RC वर्मा हो गया, हम वर्मा को पहले लेंगे, वर्मा फिर कॉमा करेंगे, फिर R.C लिख देंगे, ताकि जो सरनेम है उसको हाईलाइट हो, मिल गया। अब जो वर्मा के जो पहले 3 अल्फाबेट्स है VER, इसको लेकर के ये 3 अल्फाबेट्स और हमारे जो बुक का टाइटल है, समझ लो फिजिक्स है, उसका VER-P कर दिया हमने, तो वो बन गया हमारा बुक नंबर। हमने पहले ही फिजिक्स में 530 नंबर है, 530 में फिर हमने बुक नंबर कैसे बनाया, VER-P कर दिया, 530 में ये आगे बढ़ गया, इस नंबर से ये बन गया इसका कॉल नंबर। कई कई जगहों पे हम लोग किताबों के साथ साथ अगर रेफरेंस मटेरियल है तो हम उसमें R भी डाल देते हैं, ताकि ये बुक इशू ना हो, ये रेफरेंस में ही रहे। तो बाकी जगह पर हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए D डाल देते हैं, या टेक्स्ट बुक्स है तो T डाल देते हैं, या कोई कॉपी नंबर भी डाल देते हैं। कभी कभी कॉलेज लाइब्रेरीज में आप देखोगे एक ही तरह की बुक्स की 10-10 कॉपीज आती हैं, 5-5 कॉपीज आते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को कोई इशू ना हो इशू कराने में, क्योंकि वहां पर टेक्स्ट बुक्स नहीं होती हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है वो लाइब्रेरी पे ही डिपेंडेंट है। तो क्या करते हैं उसमें, हम कॉल नंबर में हम कॉपी नंबर भी डाल देते हैं, कॉपी नंबर 1-2 कोलन करके 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, ताकि हमें ये पता चल गया इसके पास 1 वाली कॉपी है, उसके पास 2 कॉपी है। इस तरह से हम कॉल नंबर को बनाते हैं। तो कॉल नंबर बेसिकली देखा जाए हमें एक एड्रेस स्लिप की तरह बन जाता है डॉक्यूमेंट को। तो जो इन्फॉर्मेशन इससे रीड करके हमारे पास जो स्टाफ है वो आराम से इसको बुक को शेल्फ तक ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि बुक कहाँ से आई है। और अगर एजुकेशन में 4 किताबें 370 के ही उसमें हैं, तो मगर अल्फाबेटिकली जब हम लगाते हैं, ए अल्फाबेट से जो पहले ऑथर आएगा उसका पहले लगेगा, फिर बी वाला लगेगा, फिर सी लगेगा, डी लगेगा, इस तरह से हम लोग कॉल नंबर की वजह से इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं। एजुकेशन में 10 ऑथर हैं तो 10 ऑथर की किताबें हमको एक जगह मिल जाएंगी, मगर अल्फाबेटिकली। आपको पता है आपका एस में ऑथर है तो आप अपना एस में जाकर देख सकते हैं एजुकेशन को। ये बन जाता है कॉल नंबर। तो कॉल नंबर में हमारे पास क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर अगर है कोई वो डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है हमने, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स PV नायक की है, तो हमने इसका क्या बना लिया, 530 तो इसका नंबर हो गया फिजिक्स का, और बाकी NAI हो गया नायक का। तो आगे इसी तरह से हमने इसको नंबर जोड़ के बना दिया, इस तरह से हमें समझ आ गई। अब अगर हम कोलन क्लासिफिकेशन में देखेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन पे एम के सेन गुप्ता ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तो हमने क्या किया, टी तो एजुकेशन का नंबर है जैसे मैंने आपको बताया, टी 15 एन 72 मतलब उसका क्योंकि पब्लिश हुई है 1972 में, वहां पर आप हमें ऑप्शन मिल जाता है, आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी डाल सकते हो, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, तो डाल दिया हमने साथ में डॉक्यूमेंट का नंबर। इस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। थोड़ा सा इसे ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेन मेन क्लासेस याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। बाकी जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास बुक भी होती है, उसमें कोई इशू नहीं होता, बुक से ही आप पढ़ के क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ज़बानी रखने के लिए नहीं है याद, पर मेन क्लासेस अगर रख लेंगे तो सही रहता है, थोड़ा ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो कितनी तरह की जो क्लासिफिकेशंस है वर्ल्ड वाइज जो यूज़ हो जाती हैं वो है बिलिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जिसको बीसी के नाम से अल्फाबेट से यूज़ किया जाता है, कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एलसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी। तो मैंने जो यूजुअली देखा है, यूडीसी तो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ होती है, ये सारे देखा जाए तो इनको न्यूमेरिकल्स भी इसमें यूज़ होते हैं कई जगह पे, और में अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं, तो दोनों तरह के अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशंस होती हैं इसमें दोनों में, जैसे कोलन में इस तरह का है, दोनों चीज़ें मिलके बनाई जाती हैं। और यूडीसी में ये है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं तो आप दो सब्जेक्ट्स को मेन क्लासेस दो बन जाती हैं आपकी, तो आप उस वहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के भी एक क्लास नंबर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से यूडीसी ज़्यादातर क्यों इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जहाँ पर बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में टाइटल्स में वो जोड़ हो जाता है, तो आप यूडीसी यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर। बाकी स्कूल लाइब्रेरीज कॉलेज लाइब्रेरीज में ज़्यादातर डीडीसी यूज़ होता है। तो डीडीसी जो है क्लासिफिकेशन स्कीम किसने डिज़ाइन किया था, मेलविल डेवे ने 1876 में। तो ये वाली क्लासिफिकेशन जो है ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती, क्योंकि ये थोड़ी ईजी है टू अंडरस्टैंड है, आपके पास इस पे चार बुक्स रहती हैं, आपके पास टेबल्स हैं इसमें, आपके पास दो शेड्यूल्स हैं और एक जो है वो इंडेक्स है। आपको अगर कोई भी नंबर कभी नहीं मिल रहा है, कहीं से समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंडेक्स में जाएंगे, सीधा इंडेक्स खोल के देखेंगे अल्फाबेटिकली, वहाँ से जो आपको नंबर मिलेगा। पर इंडेक्स का मतलब यह है कि आप जाकर के मेन फाइल में जाकर के शेड्यूल में जाकर के उसे रीचेक कर लीजिए उस नंबर को, ताकि आप गलत नंबर ना दें। वहाँ से देख लेते हैं कि नंबर सेम है, ठीक है, और उसमें जो सब डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स में वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई होती है। वो कभी कभी ये कहते हैं कि इस नंबर को आप पीछे इस नंबर के साथ जोड़ के डालिए, वहाँ पर एस्ट्रिक मार्क्स लगे होते हैं, तो वो एस्ट्रिक मार्क्स का भी एक मीनिंग होता है। वहाँ से हम एस्ट्रिक मार्क पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है तो वो बताएगा हमें क्या ऐड करने की ज़रूरत है। अगर हम एरिया नंबर डाल रहे हैं, एरिया मतलब जैसे दिल्ली का नंबर है, तो उसमें 09 डालने की ज़रूरत है या नहीं है, वो वहाँ पर इंडिकेट करते हैं हमें। ये डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है प्योरली जो है इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसमें खाली नंबर्स पे ही पूरा ये चलती है। अरेबिक न्यूमरल्स हैं इसकी नोटेशन में, डेसिमल एक यूज़ किया जाता है थ्री नंबर्स के बाद। ये स्कीम जो जैसे मैंने बताया आपको फोर वॉल्यूम्स में है, और अब 21st एडिशन इसका यूज़ हो रहा है, और इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है रिकॉल करने की, निमोनिक्स डिवाइसेस जो है इसमें है अवेलेबल। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसके हर नंबर के पास आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, और मिनिमम थ्री डिजिट्स का पहला नंबर है जो आपको मेन क्लास तक ले जाता है। कैसे भी आप देखेंगे आपको ये इजीली, आपको बहुत आसानी से फर्स्ट थ्री डिजिट से पता चल जाता है ये क्लास नंबर का मतलब है, ये इस सब्जेक्ट की बुक है। तो जैसे 8, 7 था 100 में कोई नंबर आ गया तो आपको लगेगा ये 8 की किताब है, तो 8 में चले जाओ, तो आपको वहाँ पर फर्दर डिवीजन भी मिल जाता है। इस क्लासिफिकेशन को 10 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे मैं आपको बताया था 000 जनरलिटीज़ है, इसे आप याद रख सकते हैं। 100 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी है, 200 रिलीजन है, 300 सोशल साइंसेज है, 400 लैंग्वेजेस है, 500 नेचुरल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स है, 600 टेक्नोलॉजी है, 700 आर्ट्स है, 800 लिटरेचर है और 900 ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री है। इसके साथ साथ हमारे पास टेबल्स भी रहते हैं इसमें, जहां से हमें नंबर को ऐड करना होता है वो भी हम वहां से देख के उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने आज जो बात की, हमने आपको बताया कि टेक्निकल प्रोसेसिंग कितनी इम्पोर्टेंट है हर लाइब्रेरी में, उसके बिना आपको इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना टफ हो जाता है, और टेक्निकल प्रोसेसिंग में हमने क्या क्या चीज़, कौन कौन सी स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है हमने बताई आपको, बहुत सारी हैं, पर हमने इसमें से थोड़ा सा जो जानकारी हमने ली वो ली हमने डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की, जिसने कि पूरे यूनिवर्स को 10 क्लासेस में, ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट 3 डिजिट्स में डॉट डाल के आपको मेन क्लास पता चल जाती है। और आज के लिए इतना ही, होप आपने समझ लिया होगा जहां तक कि मैंने इस टेक्निकल प्रोसेसिंग को आपको समझाया। थैंक यू शिक्षार्थी।